एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मसीह तो हमको बचा ले, गुरु
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर फिर से आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। यह हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। पिता, मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें तो विशेष आशीष दे, तेरा वचन के द्वारा तेरा रास्ता में आने के लिए मदद कर और हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर। प्रभु मेरे संग हो, पिता तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा प्रस्तुत कर सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सहस्त्राब्दी के अंत में होने वाली घटनाएं। हम लोग इन दिनों यीशु मसीह इस 1000 साल के दौरान अपने लोगों के संग रहते हैं और क्या क्या घटनाएं होती है उसके विषय में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आइए हम इसके बारे में आज और आगे सीखें। 1000 वर्षों के अंत में शेष मृतक दुष्ट लोग जीवित किए जाएंगे। इस प्रकार शैतान को उसकी निष्क्रियता से, जिसने उसे बांध रखा था, स्वतंत्र किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:5-7। दुष्टों को एक बार फिर से धोखा देकर वह उन्हें पवित्र लोगों की छावनी एवं प्रिय नगर नया यरूशलेम, प्रकाशित वाक्य 20:9, जो इस समय तक मसीह के साथ स्वर्ग से उतर चुका है, के विरुद्ध नेतृत्व करता है। मसीह, पवित्र लोग व नया शहर नीचे उतरते हैं। मसीह पवित्र लोगों एवं नए यरूशलेम के साथ पृथ्वी पर 2 उद्देश्यों के लिए फिर से उतरता है। वह सहस्त्राब्दी के न्याय के निर्णयों को क्रियान्वित करके महान विवाद को समाप्त करेगा और वह पृथ्वी को शुद्ध और नवीनीकृत करेगा ताकि वह उस पर अपना शाश्वत राज्य स्थापित कर सके। तब संपूर्ण अर्थ में यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, जकरिया 14:9। दंड का पुनरुत्थान होता है। अब वह क्षण आ गया है जो मसीह की उस प्रतिज्ञा की पूर्ति को पूरा करेगा कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, यूहन्ना 5:28। अपने दूसरे आगमन पर मसीह ने पहले पुनरुत्थान, जीवन के पुनरुत्थान में धर्मी मृतकों को उनकी कब्रों से निकाला था। अब दूसरा पुनरुत्थान होगा जिसके बारे में यीशु ने कहा था, दंड का पुनरुत्थान, यूहन्ना 5:29। प्रकाशित वाक्य भी इस पुनरुत्थान को संदर्भित करता है। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए, वे जो पहले पुनरुत्थान में नहीं जिलाए गए ना जी उठे, प्रकाशित वाक्य 20:5। शैतान की कैद समाप्त होती है। 1000 वर्ष के अंत में दुष्टों का पुनरुत्थान शैतान को उसकी कैद से मुक्त करता है थोड़ी देर के लिए, प्रकाशित वाक्य 20:3। परमेश्वर के शासन को चुनौती देने के अपने अंतिम प्रयास में वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए निकलेगा, प्रकाशित वाक्य 20:8। चूंकि दुष्टों को उसी विद्रोह की भावना के साथ जिलाया जाता है जो मरते समय उनमें से प्रत्येक के पास थी, उसका कार्य कठिन नहीं होगा। वे लोग नगर पर आक्रमण करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अपने अंतिम छल में शैतान बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य पर कब्जा करने की आशा के साथ दुष्टों को प्रेरित करना चाहता है। पृथ्वी के चारों ओर की जातियों को इकट्ठा करके वह उन्हें प्रिय नगर के विरुद्ध ले जाता है, प्रकाशित वाक्य 20:8-9। दुष्ट जिन्होंने मसीह के बलिदान के प्रायश्चित के गुणों के माध्यम से परमेश्वर के नगर में प्रवेश करने से हठपूर्वक इनकार कर दिया, अब घेराबंदी और युद्ध द्वारा प्रवेश और नियंत्रण प्राप्त करने की ठानते हैं। यह तत्व कि दुष्ट जैसे ही परमेश्वर उन्हें फिर से जीवन देता है उसके विरोध हो जाते हैं और उसके राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। वह उनके भाग्य के बारे में किए गए निर्णय की पुष्टि करता है। इस प्रकार से उसका नाम व चरित्र, जिसे शैतान ने बदनाम करने की कोशिश की है, सभी के समक्ष पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो जाएगा। महान श्वेत सिंहासन का न्याय यहूना इंगित करता है कि जब परमेश्वर के शत्रु नगर को घेर लेते हैं और उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर अपना महान श्वेत सिंहासन स्थापित करता है। जैसे ही संपूर्ण मानव जाति इस सिंहासन के चारों ओर मिलती है, कुछ शहर के अंदर सुरक्षित हैं, अन्य बाहर न्यायाधीश की उपस्थिति में भयभीत हैं। परमेश्वर न्याय के अंतिम चरण को पूरा करेगा। यह वह समय है जिसके बारे में मसीह ने कहा था, जब उसने कहा, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, कहता है लूका 13:28। न्याय के इस कार्यकारी चरण को पूरा करने के लिए परमेश्वर की अभिलेख पुस्तकें खोली जाएंगी, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, प्रकाशित वाक्य 20:12। तब परमेश्वर विनाश का दंड सुनाता है। परमेश्वर इन लोगों को केवल उनके अस्तित्व को फिर से समाप्त करने के लिए जीवित क्यों करता है? सहस्त्राब्दी के दौरान छुटकारा पाए लोगों को ब्राह्मण में प्रत्येक बुद्धिमान प्राणी के साथ परमेश्वर के न्यायपूर्ण व्यवहार की जांच करने का अवसर मिला। अब खोए हुए लोग शैतान और उसके दूतों सहित परमेश्वर के न्याय के तरीकों की पुष्टि करेंगे। इस महान श्वेत सिंहासन के न्याय के विषय में पौलुस के शब्द, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, रोमियो 14:10 पूरे होंगे। वहां सभी प्राणी, पतित एवं अपतित, बचाए गए और खोए हुए, घुटने टेकते हैं और स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:10-11 और इसे तुलना करें यशाया 45:22-23 से, तब परमेश्वर के न्याय का प्रश्न सदैव के लिए हल हो जाएगा। अनंत जीवन पाने वालों का उस पर अटूट विश्वास होगा। पाप फिर कभी ब्राह्मण को नष्ट नहीं करेगा और ना ही इसके निवासियों पर कहर बरसाएगा। शैतान व पापियों का विनाश होगा। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद शैतान, उसके दूत और उसके मानव अनुयायी अपनी सजा प्राप्त करते हैं। उन्हें एक अनंत मृत्यु मरना है। आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, प्रकाशित वाक्य 20:9। शहर के बाहर भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के लिए दूसरा पत्रस 3:7 पृथ्वी की सतह पिघलती प्रतीत होती है, जो आग की बड़ी झील बन जाती है। यहोवा का पलटा लेने का दिन यशाया 34:8, जिसमें वह अपना अनोखा कार्य करेगा। यशाया 28:21, अपने शत्रुओं को नष्ट करने का दिन आ गया है। यूहन्ना ने कहा, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया, प्रकाशित वाक्य 20:15। शैतान व उसके साथियों को भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा, प्रकाशित वाक्य 20:10। संपूर्ण बाइबल का संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि यह दूसरी मृत्यु, प्रकाशित वाक्य 21:8, जो दुष्टों के ऊपर आएगी, उसका अर्थ उनका पूर्ण विनाश है। फिर अनंत काल तक जलते हुए नरक की अवधारणा का क्या? ध्यानपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि बाइबल ऐसा कोई नरक या यातना के विषय में नहीं सिखाती है। नरक बाइबल की दृष्टि में नरक उनके लिए जो परमेश्वर और यीशु मसीह के उद्धार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, दूसरी मृत्यु में अनंत आग के द्वारा दंड और विनाश का स्थान एवं अवस्था है। नरक की आग का स्वभाव क्या है? क्या नरक में लोग हमेशा के लिए जलते हैं? आइए हम आगे देखें। दुष्टों का अंत होता है। शास्त्रों के अनुसार परमेश्वर केवल धर्मियों को ही अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, नरक में अनंत जीवन नहीं, रोमियो 6:23। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि दुष्ट लोग अलग कर दिए जाएंगे। भजन संहिता 37 का 9 और 34, वे नष्ट हो जाएंगे। भजन संहिता 37 का 20 और 68 का 2, वे चेतना की स्थिति में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे परंतु जल जाएंगे। मलाकी 4 का 1, मती 13 का 30 और 40, दूसरा पत्रस 3 का 10, उनका विनाश होगा। भजन संहिता 145 का 20, दूसरा तिमोथियस 1 का 9, इब्रानियों 2 का 14, भस्म कर दिए जाएंगे। भजन संहिता 104 का 35, दुष्टों के दंड के विषय में बात करते हुए नया नियम चिरस्थाई व अनंत शब्दों का प्रयोग करता है। ये शब्द यूनानी शब्द एओनियोस का अनुवाद करते हैं और परमेश्वर के साथ साथ मनुष्य के लिए भी लागू होता है। गलत फहमी से बचने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि एओनियोस शब्द एक संबंध सूचक शब्द है। इसका अर्थ उस वस्तु द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे वह संशोधित करता है। इसलिए जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर के लिए एओनियोस चिरस्थाई अनंत शब्द का उपयोग करता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके पास अनंत अस्तित्व है क्योंकि परमेश्वर अमर है। परंतु जब यह शब्द का उपयोग नश्वर मानव प्राणी या नाशवान वस्तुओं के लिए करता है तो इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है या वस्तु का अस्तित्व है। उदाहरण के लिए यहूदा 7 कहता है कि सदोम व अमोरा को अनंत आग के प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, फिर भी वे शहर आज नहीं जल रहे हैं। पत्रस ने कहा कि उस आग ने उन शहरों को राख में बदल दिया, उन्हें विनाश का दंड मिला, दूसरा पत्रस 2 का 6। वह अनंत आग तब तक जलती रही जब तक जलने के लिए कुछ ना बचा और फिर बुझ गई, यिर्मयाह 17 का 27 और दूसरा इतिहास 36 का 19 से मिलाइए। इसी प्रकार जब मसीह दुष्टों को अनंत आग के लिए नियुक्त करता है मती 25 का 41, तो वह आग जो दुष्टों को जला देगी जो बुझने की नहीं मती 3 का 12, केवल जब जलने के लिए कुछ नहीं होगा तब वह बुझ जाएगी। इस प्रकार दंड भुगतने वालों का अंत दूसरी मृत्यु है। यह मृत्यु अनंत होगी जिसमें से कोई पुनरुत्थान नहीं होगा और ना ही हो सकता है। प्रभु के दिन का वर्णन करते हुए जब पाप के सभी निशान मिटा दिए जाएंगे, पत्रस ने कहा उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, दूसरा पत्रस 3 का 10। इस तरह से परमेश्वर पृथ्वी का शुद्धिकरण करता है। वह अग्नि जो दुष्टों का नाश करती है पृथ्वी को पाप के प्रदूषण से शुद्ध करती है। इस पृथ्वी के खंडहरों में से परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी लाएगा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, प्रकाशित वाक्य 21 का 1। प्रभु के उस आने वाले दिन को देखते हुए जिसमें पाप और पश्चाताप रहित पापी नाश किए जाएंगे, पत्रस सबसे कहता है तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु के दिन की बाट जोहते हुए वह उसके आने को शीघ्र बनाते हुए तुम्हें पवित्र एवं धर्मी जीवन जीना चाहिए। अपनी आशा को मसीह की वापसी की प्रतिज्ञा पर आधारित करते हुए उसने पुष्टि की हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम भी इन बातों की आस में लगे हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, कहता है दूसरा पत्रस 3 का 11, 13 और 14। और प्यारो, यही संवाद आपके लिए और मेरे लिए आज है कि हम उस दिन के आने के लिए तैयार हों कि हम परमेश्वर के साथ हो सके। हमें शुद्ध और पवित्र होना है, हमें धर्मी जीवन यापन करना है, हमें बुराई और कलंक को हमारे जीवन से किनारे करना है। इसके लिए हमें परमेश्वर का आशीष चाहिए और हमें परमेश्वर के राज के आने का इंतजार और बाट जोहते रहना है, ताकि हम उस आशा में जिए और यत्न करें कि हम उस दिन उसे शांति से मिल सके और उस दिन वह हमें निष्कलंक और निर्दोष पाए। इसके लिए वही हमें मदद करेंगे। आइए हम उसके पवित्र आत्मा के लिए मांग करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। मैं पिता मेरे हर एक श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, तू उन्हें अपने रास्ता में बुला, उन्हें तेरे सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए मदद कर। पिता हम सबों को तेरे पवित्र आत्मा का वरदान दे और उससे भर दे। हमें तू मदद कर पिता कि हम पाप और बुराई से निकल करके उसे छुटकारा पा करके तेरे साथ सच्चाई का जीवन यापन करें, हम धर्मी जीवन व्यतीत करें, कि जब यीशु मसीह आएगा हम खुशी खुशी शांति से उसे मिलने सके, जब वो आएंगे हम निष्कलंक और निर्दोष पाए जाने सके। पिता इसके लिए हमें तेरा पवित्र आत्मा दे कि हम सही चाल चले और तेरे रास्ता में चले और तेरे राज के लिए तैयार रहें। पिता हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दे और तेरा सामर्थ दे पिता परमेश्वर, हमें तेरे राज के लिए तैयार कर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर। आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।